डिवोर्स? उनकी बात सुनकर दादाजी ने अभिमान जी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें चिंता भरी नजरों से देखते हुए बोले, अब आगे। बेटा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी बात समझनी ही होगी। हम इस तरह से अरमान की जान को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए जैसा कि हमने उसे बताया तो तुम्हें भी उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन वसुंधरा को अब तुम्हारी नौकरानी बनकर ही रहना होगा। तुम जो चाहे उससे वो काम करवा सकते हो। अभी फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ और देखो बच्चे कहाँ गए हैं। कोई भी बच्चा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? किसी भी बड़े को इस बात के बारे में दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि सब बच्चे 3 घंटे पहले से ही अपने अपने पार्टनर के साथ कमरे में जा चुके थे और चारों कपल्स अपने अपने पार्टनर को प्यार करने में पूरी तरह से बिजी हो गए थे। इसी बीच उन्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि अगर अरमान को होश आ गया होगा तो वो सबसे पहले उन्हीं बारे में पूछेगा। फिलहाल अरमान, जो कि इस वक्त अपने शानदार बेडरूम में था, एक बार फिर वो अपनी यादें रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार लास्ट टाइम वो कहाँ था। लेकिन उसे केवल इतना ही याद आ रहा था कि वो किसी गैंग को पकड़ने के लिए गया था। वहीं पर उसकी मुठभेड़ हुई थी और तभी उसके पीछे किसी ने सर पर वार किया था। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था कि इन 2 सालों में उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था। फिलहाल कहीं न कहीं अरमान के दिल में एक अजीब सा सुकून था कि वसुंधरा उसके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। वसुंधरा और वीर को इतनी बुरी हालत में देखकर उसे कुछ अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का हो रहा था कि ये सुकून उसे कब मिला, वही बात वो भूल चुका था। फिलहाल उसने गहरी सांस ली और सोचा कि सबसे पहले तो टाइगर से उस आदमी का पता लगवाना चाहिए जिसकी वजह से उसकी याददाश्त गई है। अरमान उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता था, और फिर अरमान सिंघानिया को ये सूट नहीं करता कि कोई उसे भुलक्कड़ कहे या फिर ये बोले कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए उसे इस तरह से बर्ताव करना था कि मानो वो सब कुछ जानता है और उसे किसी से कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल देर ना करते हुए अरमान ने गहरी सांस ली और जल्दी ही स्टडी रूम में चला गया। और जैसे ही वो स्टडी रूम में आया, वो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि उस वक्त स्टडी रूम में टाइगर और मारिया के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। अब ये देखकर वो पूरी तरह से उलझन में था कि अचानक से सब लोग कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि टाइगर और मारिया के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। और उसे हैरानी हुई कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था सभी लोग एक साथ गायब हुए हों, क्योंकि सभी को अरमान की टाइमिंग अच्छी तरह से पता थी कि अरमान कितने बजे कहाँ होता है। अरमान ने गहरी सांस ली और अगले ही पल टाइगर को तिरछी नजरों से देखा। टाइगर ने देर ना करते हुए तुरंत सबको ग्रुप में मैसेज भेज दिया और सबको स्टडी रूम में जमा होने के लिए कहा। वहीं जब उन तीनों कपल्स के फोन 1:07 बजे तो सभी का ध्यान, जो कि उस वक्त अपनी अपनी बीवी को बेतहाशा चूम रहे थे, वो तुरंत पीछे हट गए। और जैसे ही सबने अपना फोन चेक किया तो सबके चेहरों के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। वे जिस हालत में थे उसी हालत में फटाफट अपनी अपनी शर्ट और कमीज लेकर तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल पड़े। आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों ही एक साथ अपने कमरे से शर्ट हाथ में लेकर बाहर निकले। और जैसे ही उन चारों ने एक दूसरे को इस तरह से शर्टलेस देखा, चारों ही एक दूसरे से अपनी नजरें चुराने लगे। वहीं आहान जल्दी से अपनी कमीज पहनकर दरवाजे के पास आया। ध्रुव भी जल्दी जल्दी अपनी कमीज पहन रहा था और उसके बटन लगा रहा था। ध्रुव की ओर देखकर आहान ने आश्चर्य से मुंह बनाया और अगले ही पल तंस कसा। अच्छा, तो ये थी तुम लोगों की सीक्रेट मीटिंग, हाँ? और तुम लोगों को क्या लगा कि आहान सिंघानिया बिल्कुल रोमांटिक नहीं है या उसे रोमांस करना नहीं आता? अरे, जब मैंने आकाश भैया, सुमित भैया और फिर तुझे रोमांस करते खिड़की से देख लिया था तो फिर मैं भी अपनी हवा हवाई के साथ रोमांस करने के लिए चला आया। मैं जानता था कि इस तरह से बीच में अरमान भाई का SMS आ जाएगा और वो स्टडी रूम में भी पहुंच जाएंगे। इतना कहकर आहान चुप हो गया और उन सबको तंज भरी नजरों से देखने लगा। आहान, जिसे ज्यादा पटर पटर करने की आदत थी, उसने बातों ही बातों में ये राज उगल दिया कि उसने खिड़की से सबको रोमांस करते हुए देख लिया था। ये सुनकर एक पल में ध्रुव, आकाश और सुमित की आंखें कठोर हो गई और ध्रुव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने दांत पीछे और आहान को घूरते हुए पूछा, क्या बकवास कर रहा है तू? क्या तूने बजीवंशिका के साथ में देख लिया था? वहीं आकाश और सुमित भी अब आहान को घेर कर खड़े हो गए थे और दोनों ही उसे जानलेवा नजरों से देखने लगे थे। अब आहान ने हड़बड़ाते हुए अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी और उसने बारी बारी से तीनों को आश्चर्य से देखते हुए एकदम से बताया, अरे आकाश भैया, आप लोग मेरी बातों का मतलब गलत समझ रहे हैं। तब तक आप लोगों का पूरा वाला रोमांस शुरू नहीं हुआ था, मैंने तो बस आप लोगों को हग और किस करते हुए देखा था, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा, तो इसलिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ध्रुव के दांत गुस्से में किटकिटा रहे थे। वो झल्लाते हुए आगे बोला, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपने कमरे से वो खिड़की ही हटवा लेनी चाहिए। इतना बोलकर वो जल्दी ही अब स्टडी रूम में जाने लगता है। वहीं आकाश और सुमित ने एक दूसरे को सहमति भरी नजरों से देखा और दोनों ने ही अपनी नजरें झुका ली और मन में ये फैसला करते हुए कि वो भी अपने अपने कमरे से वो खिड़की हटवा देंगे। यही सोचकर वो दोनों भी फटाफट स्टडी रूम की ओर चल पड़े। अब जैसे तैसे जल्दबाजी में वो चारों स्टडी रूम में जमा हो गए थे। चारों को एक साथ बदहवास हालत में देखकर सब कंफ्यूज रह गए, क्योंकि चारों बिना कोट ब्लेजर के वहां आए थे, जबकि सभी लोग हमेशा एकदम सूट बूट में बढ़िया तरीके से तैयार होकर अरमान के सामने खड़े होते थे। लेकिन आज तो वो अपने फॉर्मल तरीके से ही वहां आकर खड़े हो गए थे। अरमान ने ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हें देखा और कुछ उखड़े अंदाज में बोला, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से नहाए नहीं हो तुम सब। अरमान मुंह से ये सुनते ही अगले ही पल आहान तपाक से बोल पड़ा, नहीं नहीं अरमान भाई, मैंने तो थोड़ी देर पहले गार्डन में ही नहा लिया था, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो रोज नहाता हूँ। आहान की बात सुनकर अरमान का चेहरा एकदम से तमतमा गया और वो अपनी डार्क वॉइस में आहान पर भड़क उठा, क्या बात है आहान, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी, अब जल्दी से क्लियर करो। उसकी कठोर आवाज सुनकर आहान तुरंत ध्रुव के पीछे छुपकर खड़ा हो गया, क्योंकि अरमान की नजरों की तपिश सहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। फिलहाल अरमान ने आकाश और सुमित को देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी कुछ यादें चली गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया हूँ, मैं वही हूँ, ठीक है। और वैसे भी भले ही वसुंधरा और वीर को मैंने नौकर बनाकर अपने घर में रखा है, लेकिन आप लोगों को पता है ना क्या करना है, 24 घंटे उन पर नजर रखनी है, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, उन्हें एक एक चीज के लिए मोहताज कर दो। अब जैसे ही अरमान ने अपनी डार्क वॉइस में वसुंधरा और वीर के बारे में बताया कि उन्हें उनके साथ क्या करना है, ये सुनकर सक पका गए थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने अरमान से कोई सवाल नहीं किया, वे केवल खामोशी से अरमान की बातें सुनते रहे। तभी अरमान ने गहरी नजरों से टाइगर मारिया की ओर देखा और बेपरवाही से उनसे बोला,
टाइगर, मैं नहीं जानता कि मैंने किन हालातों में तुम दोनों की शादी करवाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी, प्यार, बच्चा, ये सब सिर्फ और सिर्फ कमजोरी होती है इंसान की, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों डाइवोर्स ले लो। अब जैसे ही अरमान में अगला बम टाइगर पर फोड़ा, तो ये शब्द सुनते ही सब लोगों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गए। हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। वहीं ध्रुव और आहान निराशा से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन आकाश तुरंत अरमान पर बरसते हुए बोला, अरमान, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम इस तरह से भला टाइगर को डाइवोर्स लेने के लिए कैसे कह सकते हो? क्या तुम भूल गए कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है? उसकी आवाज सुनते ही अरमान ने अचानक अपनी गर्दन तिरछी करके आकाश की ओर नाराजगी से देखा और एकदम से उससे पूछा, आकाश, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से मेरे फैसलों के खिलाफ टांग अड़ाने लगे हो? हाँ, मैंने कहा ना, ये शादी, ये प्यार सिर्फ इंसान को कमजोर बनाते हैं, और हमारे काम में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं है। मैंने टाइगर को सिंपल चॉइस दी है, या तो वो इस शादी से आज़ाद हो जाए, या फिर वो अपनी बीवी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करे, लेकिन फिर वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। अरमान के मुंह से ये सुनकर मारिया, जो कि हमेशा इमोशनल लेस चेहरे के साथ वहां खड़ी रहती थी, अचानक उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने अपनी भरी हुई आंखों से टाइगर की ओर देखा। टाइगर की भी कुछ ऐसे ही हालात थी, क्योंकि टाइगर और मारिया बहुत कम इमोशन किसी और को दिखाते थे, और वो दोनों बचपन से एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, ये बात वे दोनों अच्छी तरह जानते थे। फिलहाल अब अरमान की ये बात सुनकर मारिया पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना चेहरा एकदम इमोशनल लेस करके वहीं खड़ी रही। वहीं अरमान अपना फैसला सुनाकर वहां से बाहर निकल चुका था, लेकिन उन सबके कानों में अब तक अरमान के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे, शादी, प्यार सिर्फ कमजोरी होती है, और अगर अरमान के साथ रहना है तो कोई शादी या प्यार कर ही नहीं सकता है। अरमान के जाने के बाद आहान की आंखों में चुपके से आंसू बहने लगे और वो उदास स्वर में बोला, ये क्या कहकर गए हैं भाई? अगर अरमान भाई को मेरी और रौनक की शादी के बारे में पता चल गया तो क्या वो मेरा भी तलाक करवा देंगे? ध्रुव, आकाश और सुमित तीनों को भी अब यही चिंता होने लगी थी कि अगर अरमान को उनकी शादियों के बारे में पता चला तो क्या अरमान उनका भी तलाक करवा देगा। कहीं ना कहीं इस वक्त सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन से निकलें तो निकलें कैसे, क्योंकि अरमान ने एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी और उस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता था। वहीं ध्रुव तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि वंशिका को वो अपने दिल और जान से प्यार करता था, उससे अलग होने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। फिलहाल आकाश ने गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल सबको आश्वासन दिया, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है ना कि अरमान की यादें चली गई हैं, इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वंशिका उसका एंटीडोट भी बना लेगी और एक बार फिर अरमान की यादें वापस आ जाएंगी। आकाश ने फिर टाइगर की तरफ शांत नजरों से देखते हुए उसे समझाया, टाइगर, मेरी बात ध्यान से सुनो, अरमान ने तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोला है तो तुम्हें इस बात को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त अरमान बीमार है, तो उसको एक बीमारी की तरह ही लो और तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और मारिया, तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में कुछ ना कुछ सोचता हूँ। ये बोलकर आकाश वहां से बाहर जाने लगा था, लेकिन आहान के दिल और दिमागों में अभी भी अरमान की कही हुई बातें गूंज रही थी। कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे पूरी तरह से लटके हुए थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अब एंजल के साथ थी। दोनों ने ही साड़ियां पहन रखी थी और दोनों बड़ी प्यारी लग रही थी। दोनों ही अब अंश और दादाजी को बाय बोलकर मार्केट की ओर जाने लगी। आस्था खुले मैदान में शॉपिंग करना चाहती थी। भले ही उसने अंश के लिए कॉम्प्लेक्स से कितने सारे ड्रेस और जो भी आइटम वो चाहती थी वो सब खरीद चुकी थी, लेकिन वो अपने लिए और बाकी सब घर वालों के लिए अलग अलग फरमाइशों के हिसाब से कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग आइटम खरीदना चाहती थी, वो भी अपनी पसंद की जगह से। उसे राधिका के लिए झुमके लेने थे, वंशिका के लिए कुछ और लेना था, तो सभी की पसंद के अनुसार कुछ न कुछ खरीदने के लिए वो बाजार जाना चाहती थी। हालांकि वो चाहती तो ये चीजें मॉल वगैरह से भी ले सकती थी, लेकिन आज आस्था को अपनी स्टाइल में शॉपिंग करनी थी, इसीलिए आस्था और एंजल अब जल्दी ही मार्केट की ओर जाने लगी थी। अविनाश ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सिंपल गार्ड सादे कपड़ों में भेज दिए थे, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो बवाल हुआ था वो वापस नहीं दोहराना चाहता था। फिलहाल आस्था और एंजल जैसे ही एकदम इंडियन वेयर में बाजार पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग आस्था और एंजल को ही मुड़ मुड़कर बार बार अजीब नजरों से देख रहे थे। आस्था तो बेहद प्यारी लग रही थी, एंजल की शक्ल तो वैसे भी फॉरेनर जैसी लगती थी, लेकिन आस्था कुछ अलग थी। आज तो वो पूरी तरह इंडियन लुक में रची बसी बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। इतना ही नहीं, वहां पर लड़कों का एक गैंग भी था जो अक्सर इस तरह के बाजारों में जाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करता था। उस गैंग में 6 से 7 लोग थे। अब जैसे ही उन सबकी नजरें आस्था और एंजल पर पड़ी तो वो सब पलकें झपकाना भूल गए। आज तक वे कितनी ही लड़कियों के साथ बदसलूकी कर चुके थे, उन्हें अगवा करके जबरदस्ती शादी तक कर चुके थे, लेकिन आज जैसे ही आस्था पर उनकी नजर पड़ी तो वे सब कुछ भूल चुके थे। एक लड़के ने कहा, अगर इसके जैसी विश्व सुंदरी हमें मिल जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद चाहे मौत भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार इस लड़की के साथ हम अपनी मनमर्जी कर ले। चारों लड़के आस्था और एंजल को देखकर पूरी तरह अपने दिल दिमाग में कहीं ना कहीं गंदे ख्याल लाने लगे थे। वहीं आस्था उस मार्केट में आकर काफी खुश थी, क्योंकि वहां उसे एक से बढ़कर एक आइटम्स दिख रहे थे, तो आस्था ने देर ना करते हुए फटाफट जितनी हो सकती थी उतनी सारी शॉपिंग कर ली थी। एंजल ने जल्दी से एक आदमी को अपने पास बुलाया जो उसी का गार्ड था और उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थमाकर उन्हें कार में रखने को कह दिया। बाकी गार्ड्स को भी कार के पास इंतजार करने के लिए बोल दिया था।